एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जो काफी चर्चित है और कुछ हद तक कह सकते हैं रहस्यमय भी मानी जाती है। एक ऐसा ग्रंथ जिसने न केवल लाखों लोगों की आस्था को आकार दिया है, बल्कि अमेरिकी इतिहास और आप कह सकते हैं संस्कृति पर भी अपनी छाप छोड़ी है।
बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं मॉर्मन की किताब यानी द बुक ऑफ मॉर्मन की।
हाँ।
इसे लैटर डे सेंट आंदोलन, जिसे लोग अक्सर मॉर्मन चर्च भी कहते हैं, उसके सदस्य इसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं।
अच्छा,
और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब खुद को बाइबल के बराबर का दर्जा देती है। इसे यीशु मसीह का एक और नियम या अनदर टेस्टमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है।
एक और नियम बाइबल के अलावा?
हाँ बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा ये किताब खुद बताती है, वो ये है कि सभी लोगों को ये यकीन दिलाना है कि यीशु ही मसीह हैं, ईश्वर हैं, और वो दुनिया के हर कोने में, हर सभ्यता पर खुद को प्रकट करते हैं, सिर्फ मध्य पूर्व में नहीं।
तो सवाल ये उठता है कि आज इस किताब पर बात करना क्यों जरूरी है? देखिए, पहली बात तो यही कि ये अमेरिकी धार्मिक परिदृश्य का एक अहम हिस्सा है ना? इसे समझे बिना शायद हम उस देश की धार्मिक विविधता को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे।
सही बात है।
दूसरी बात, ये किताब ईश्वरीय प्रेरणा या आस्था और पवित्र ग्रंथों की प्रकृति पर कुछ बुनियादी सवाल खड़े करती है। जैसे, क्या ईश्वर का संवाद सिर्फ एक इलाके या एक समय तक ही था?
हाँ, क्या वो सिलसिला बंद हो गया?
बिल्कुल। क्या आज भी नए ग्रंथ प्रकट हो सकते हैं? तो ये किताब इन सवालों का अपना एक जवाब देती है।
और ये साफ करना भी जरूरी है कि हमारी ये चर्चा जो है वो हमें उपलब्ध जानकारी मतलब स्रोतों पर आधारित है।
हाँ, बिल्कुल।
हमारा मकसद इस किताब की सामग्री, इसके इतिहास और इसके जो मुख्य संदेश हैं उनको निष्पक्षता से देखना है। हम इसके दावों को सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं,
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बस ये समझने की कोशिश है कि ये किताब क्या कहती है और इसका दुनिया पर क्या असर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं।
ठीक है, तो किसी भी किताब को समझने के लिए उसके लेखक को या कहें कि उसके स्रोत को जानना जरूरी होता है।
हाँ
मॉर्मन की किताब के मामले में ये कहानी शुरू होती है जोसेफ स्मिथ जूनियर से। इनका जन्म हुआ था 1805 में अमेरिका के ग्रामीण न्यूयॉर्क में। वो एक ऐसे दौर में पले बढ़े जब अमेरिका में धार्मिक जोश बहुत ज्यादा था, जिसे सेकेंड ग्रेट अवेकनिंग कहते हैं। उनकी जो फॉर्मल पढ़ाई लिखाई थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी।
हाँ, और स्मिथ की कहानी यहीं से थोड़ी मतलब दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वो इस किताब के लेखक हैं।
अच्छा, तो फिर कौन है?
उनका कहना था कि वो ईश्वर द्वारा चुने गए एक अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर।
मसीह के दर्शन हुए थे और बाद में मोरोनी नाम के एक फरिश्ते ने उन्हें सोने की बनी पट्टिकाओं मतलब गोल्डन प्लेट्स के बारे में बताया।
सोने की प्लेट्स?
हाँ, उनका यही दावा था। और इन प्लेट्स पर उनके हिसाब से सुधारी हुई मिस्री यानी रिफॉर्म्ड इजिप्शियन लिपि में एक प्राचीन इतिहास लिखा हुआ था।
सुधारी हुई मिस्री, ये कौन सी भाषा है?
देखिए, ये एक ऐसी लिपि बताई जाती है जिसे मुख्य धारा के जो भाषावेद या इतिहासकार हैं वो नहीं मानते। ये अपने आप में एक विवाद का विषय है।
तो ये अनुवाद कैसे हुआ, मतलब क्या प्रक्रिया थी? ये भी तो अनोखी होगी।
बिल्कुल अनोखी। स्रोतों के हिसाब से स्मिथ ने दावा किया कि उन्होंने करीब 3 महीनों में 500 से ज्यादा पन्नों की इस किताब का अनुवाद ईश्वर के उपहार और शक्ति द्वारा किया।
सिर्फ 3 महीने में?
हाँ, और इस काम के लिए उन्होंने कुछ कह सकते हैं दिव्य उपकरणों का इस्तेमाल किया, जिन्हें सियर स्टोन्स या यूरिम और थुमिम कहा जाता है। सियर स्टोन्स,
कहा जाता है कि वो इन पत्थरों को एक टोपी में रखकर उसमें देखते थे और फिर जो शब्द दिखते थे उन्हें लिखवाते जाते थे।
अच्छा,
अब देखिए, उनके जो अनुयायी हैं उनके लिए तो ये प्रक्रिया उनके पैगंबर होने का सबूत है।
हाँ, जाहिर है।
लेकिन जो आलोचक हैं वो इसे संदेह की नजर से देखते हैं। तो जोसेफ स्मिथ की छवि एक पारंपरिक विद्वान की नहीं बल्कि एक धार्मिक दृष्टा या विजनरी की है।
समझ गई। तो अब आते हैं किताब के अंदर। इसमें है क्या, इसका मूल सार क्या है?
देखिये, मॉर्मन की किताब का दावा है कि ये एक रिकॉर्ड है।
रिकॉर्ड किस चीज का?
प्राचीन अमेरिका के जो लोग थे ना, उनके साथ ईश्वर का कैसा व्यवहार रहा, मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व से 421 ईस्वी तक का इतिहास उसमें बताया गया है।
अच्छा, करीब 1000 साल का इतिहास।
हाँ, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि यीशु मसीह का सुसमाचार सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं था, बल्कि प्राचीन अमेरिका के लोगों को भी दिया गया था। तो ये बाइबल की कहानी के समानांतर चलती है और उसे पूरा करती है, ऐसा इसका दावा है।
ये किताब कुछ बड़े सवाल भी उठाती है और उनके जवाब देने की कोशिश करती है ना?
बिल्कुल।
जैसे, क्या ईश्वर ने पुराने जमाने के बाद नबियों के जरिए बोलना बंद कर दिया? बाइबल में यीशु ने कहा था कि उनकी दूसरी भेड़े भी हैं, तो ये कौन थी? क्या वो अमेरिका के लोग थे?
हाँ, ये सवाल मॉर्मन की किताब सीधे तौर पर उठाती है
और ये उस धारणा को चुनौती देती है जिसे बंद कैनन कहते हैं, मतलब ये विचार कि अब और कोई पवित्र ग्रंथ नहीं आ सकता।
सही, ये खुद को एक मॉडर्न जमाने का ग्रंथ बताती है।
हाँ बिल्कुल, इसका एक साफ लक्ष्य है ये साबित करना कि ईश्वर आज भी बात करते हैं।
किताब की जो कहानी है वो करीब 1000 साल लंबी है और मुख्य रूप से दो गुटों के इर्द गिर्द घूमती है, नेफाइट्स और लेमनाइट्स।
नेफाइट्स और लेमनाइट्स।
हाँ, कहानी के मुताबिक ये दोनों गुट लेही नाम के एक नबी के परिवार से निकले थे। ये परिवार करीब 600 ईसा पूर्व यरूशलम छोड़कर अमेरिका आ गया था।
अच्छा, यरूशलम से अमेरिका।
जी, किताब में इन लोगों की सभ्यताओं, उनकी सरकारों, उनके युद्धों, उनके धार्मिक आंदोलनों, उनकी सामाजिक संरचना और बार बार जो आस्था और पतन के चक्कर आते हैं उनका वर्णन है।
तो इसका दायरा तो काफी बड़ा लग रहा है, मतलब ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होने का भी दावा कर रही है और एक धार्मिक ग्रंथ भी है।
बिल्कुल, दोनों। इसमें ईश्वर से प्रेरणा कैसे मिलती है, पवित्र ग्रंथों का क्या महत्व है, नबियों की क्या भूमिका होती है, क्या मसीही ने फिलिस्तीन के बाहर भी अपना काम किया, अमेरिकी महाद्वीपों की क्या नियति है, ऐसे कई गंभीर विषयों पर बात की गई है।
और शायद इसका सबसे नाटकीय हिस्सा वो है जब पुनर्जीवित यीशु मसीह खुद अमेरिका आते हैं और वहाँ के लोगों को सीधे उपदेश देते हैं।
हाँ, ये बिल्कुल क्लाइमेक्स जैसा है।
हाँ, ये किताब के मुख्य लक्ष्य यीशु मसीह की दिव्यता की गवाही देना को और पुख्ता करता है ना?
बिल्कुल सही। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि किताब कैसे बंटी हुई है। इसमें चैप्टर्स नहीं है बल्कि छोटी छोटी किताबों का संग्रह है।
अच्छा।
इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा है नेफी की छोटी प्लेटें।
ठीक है, भाग 1, नेफी की छोटी प्लेटें, 1 नेफी से ओमनी तक। इसकी शुरुआत होती है 1 और 2 नेफी से। इसमें लेही और उनके परिवार का यरूशलेम से निकलकर समंदर पार करके अमेरिका पहुंचने का वो सफर है।
काफी रोमांचक।
हाँ, और यहीं पर नेफी, जो आस्थावान बेटा है, और उसके बड़े भाई लामन और लेमुएल, जो थोड़े विद्रोही किस्म के हैं, उनके बीच तनाव शुरू होता है। और यही तनाव आगे चलकर नेफाइट और लेमनाइट विभाजन का कारण बनता है।
अच्छा, तो ये शुरुआत से ही था।
हाँ, इन किताबों में आने वाले मसीह, यहूदियों के भविष्य और खुद मॉर्मन की किताब के बारे में भविष्यवाणियां भी हैं, साथ ही जो बुनियादी सिद्धांत हैं, आस्था, पश्चाताप, बपतिस्मा, वो भी यहीं स्थापित होते हैं।
इसके बाद याकूब, एनोस, जेरोम और ओमनी जैसी छोटी किताबें आती हैं। ये शुरुआती निफाइट्स के संघर्षों और उनकी आस्था को बनाए रखने की कोशिशों को दिखाती हैं। याकूब की किताब में खासतौर पर घमंड और अनैतिकता के खिलाफ जोरदार उपदेश हैं और एक जैतून के पेड़ का मशहूर रूपक है जो इसराइल के लोगों के बिखरने और फिर इकट्ठा होने की कहानी कहता है।
अच्छा, ये रूपक तो सुना है मैंने।
हाँ, और ओमनी के आखिर में एक और समूह मुलेकाइट्स का जिक्र आता है। ये भी यरूशलम से ही अमेरिका पहुंचे थे लेकिन नेफाइट से अलग।
अच्छा, एक और ग्रुप, ठीक है। अब भाग 2, मॉर्मन के शब्द और मॉर्मन का संक्षेपण, मौजिया से 4 निफाई तक। ये किताब का सबसे बड़ा हिस्सा है ना?
हाँ बिल्कुल। इसे मॉर्मन नाम के एक नबी और इतिहासकार ने कई पुराने रिकॉर्ड्स को छोटा करके, मतलब संक्षेप में तैयार किया था।
अच्छा, इसीलिए इसका नाम मॉर्मन का संक्षेपण है।
हाँ, इसमें सबसे पहले आते हैं मॉर्मन के शब्द, जो एक तरह की प्रस्तावना है। ये पहले हिस्से यानी छोटी प्लेटों, जो ज्यादातर आध्यात्मिक थी, और इस बड़े हिस्से जो ज्यादा ऐतिहासिक है, कुछ जोड़ती है।
समझ गई।
फिर आती है मोज़ाया की किताब। इसमें राजा बिन्जमीन का एक बहुत मशहूर भाषण है जो सेवा और मसीह के बलिदान पर जोर देता है। इसमें गुलामी से छुटकारे की कहानियां हैं और अल्मा नाम के एक पुजारी के पश्चाताप और चर्च की स्थापना की कहानी भी है।
अल्मा, ये नाम तो कई बार आता है।
हाँ, अल्मा द एल्डर, और फिर इसी में उनके बेटे अल्मा द यंगर और राजा के बेटों के नाटकीय धर्मांतरण का भी वर्णन है जब उन्हें एक फरिश्ता दिखाई देता है।
वाह।
और इसी दौर में नेफाइट समाज में राजशाही खत्म होती है और जजों का शासन शुरू होता है।
अच्छा, पॉलिटिकल चेंज भी। अब आल्मा, जो सबसे लंबी किताब है, इसमें क्या है?
आल्मा में दो मुख्य चीजें चलती हैं, मिशनरी काम और युद्ध।
अच्छा।
आल्मा द यंगर और राजा मुजाइया के बेटे लेमनाइट्स के बीच जाकर धर्म प्रचार करते हैं। उन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ता है। इसी किताब में आस्था को एक बीज के रूपक से समझाया गया है। पुनरुत्थान और प्रायश्चित जैसे विषयों पर गहरे उपदेश हैं।
और युद्ध वाला हिस्सा?
हाँ, किताब का दूसरा हिस्सा युद्धों पर केंद्रित है। इसमें कैप्टन मोरोनी नाम का एक बहादुर और धर्मी सेनापति है जो अपनी कौम की आजादी के लिए लड़ता है।
कैप्टन मोरोनी?
हाँ।
ये हिस्सा देशभक्ति, स्वतंत्रता और युद्ध की नैतिकता जैसे सवाल भी खड़ा करता है।
और दिलचस्प।
फिर आती है हेलमन किताब। इसमें नीफाइट समाज में बढ़ती अस्थिरता और नैतिक पतन का दौर दिखाया गया है। यहीं पर गेडियंटन लुटेरे सामने आते हैं।
गेडियंटन लुटेरे
ये कौन थे?
ये गुप्त संगठन थे जो सत्ता के लिए हत्या और साजिश का सहारा लेते थे, मतलब सीक्रेट कॉम्बिनेशंस।
ओहो, ये किताब उस अभिमान चक्र यानी प्राइड साइकिल को बहुत साफ दिखाती है जिसका जिक्र हमने पहले किया था।
हाँ, वो समृद्धि से घमंड और फिर पतन वाला चक्र।
बिल्कुल, समृद्धि, घमंड, बुराई, विनाश, विनम्रता, पश्चाताप। और इसका क्लाइमैक्स तब आता है जब सैमुअल नाम का एक लेमनाइट नबी शहर की दीवार पर चढ़कर आने वाले मसीह के जन्म और मृत्यु के संकेतों की भविष्यवाणी करता है, लेकिन लोग उसे मानते नहीं, अस्वीकार कर देते हैं।
अच्छा, और फिर आता है थ्री निफी। इसे किताब का आध्यात्मिक शिखर माना जाता है ना?
हाँ बिल्कुल, इसमें सैमुअल की भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। मसीह के जन्म पर आसमान में नए तारे और संकेत दिखते हैं। फिर उनकी मृत्यु के समय भयानक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूकंप, तूफान और 3 दिन का घना अंधेरा।
बाप रे।
और इस तबाही के बाद पुनर्जीवित यीशु मसीह खुद अमेरिका में प्रकट होते हैं।
सच में? मतलब फिजिकली? हाँ, किताब यही कहती है। वो लोगों को उपदेश देते हैं जो बाइबल के पहाड़ी उपदेश जैसे हैं। बीमारों को ठीक करते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और अपने चर्च को फिर से संगठित करते हैं।
ये तो बहुत बड़ी बात है। ये किताब के मूल लक्ष्य यीशु की गवाही देना का सबसे सीधा प्रमाण है।
एकदम। इसके बाद आती है फोर नीफाई, एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण किताब। ये मसीह के आने के बाद के लगभग 200 सालों का वर्णन करती है।
अच्छा, कैसा था वो समय?
उसे एक सुनहरा दौर बताया गया है। इस दौरान लोगों में कोई भेदभाव नहीं था, सब शांति और एकता से रहते थे। कोई नीफाइट या लेमनाइट नहीं था, सब मसीह में एक थे।
वाह, काश ऐसा हमेशा रहता।
हाँ, लेकिन फिर धीरे धीरे घमंड, अमीर गरीब का भेद और बुराइयां वापस आ जाती हैं, जो आखिरकार पूरी सभ्यता के विलाश का कारण बनती हैं।
ओहो, फिर वही चक्र। ठीक है, अब भाग 3, मॉर्मन का निष्कर्ष और मोरोनी के जुड़ाव। मॉर्मन, ईथर, मोरोनी, इसमें क्या है?
मॉर्मन नाम की किताब खुद नबी मॉर्मन ने लिखी है। वो नेफाइट्स और लेमनाइट्स के बीच हुए आखिरी भयानक युद्धों के चश्मदीद गवाह थे।
अच्छा, जिन्होंने संक्षेपण किया था।
हाँ, वही। वो नेफाइट्स सभ्यता के विनाश को अपनी आंखों से देखते हैं और मरने से पहले वो ये सारा रिकॉर्ड अपने बेटे मोरोनी को सौंप देते हैं।
बहुत दुखद।
हाँ, फिर ईथर की किताब है। ये असल में मोरोनी द्वारा संक्षिप्त किया गया एक और भी पुराना रिकॉर्ड है। ये जेरेडाइट्स नाम के लोगों की कहानी है।
जेरेडाइट्स ये कौन थे?
कहा जाता है कि ये बाबेल की मीनार के समय में ही अमेरिका आ गए थे, मतलब लेही के परिवार से भी सदियों पहले।
अच्छा।
इनकी कहानी भी हजारों साल लंबी है और दुखद रूप से इनका भी अंत ग्रह युद्ध और आपसी विनाश में होता है।
फिर से वही कहानी?
हाँ, ये किताब नेफाइट्स की कहानी के समानांतर चलती है और उन्हीं विषयों को दोहराती है, खासकर गुप्त संगठनों के खतरे और ये सिद्धांत कि इस वादा किए गए देश में रहने के लिए ईश्वर की आज्ञा माननी होगी।
इसमें आस्था पर एक बहुत प्रभावशाली अध्याय भी है।
और आखिर में आती है मोरोनी की किताब।
ये वो फरिश्ता थे जिन्होंने जोसेफ स्मिथ को प्लेट्स दिखाई थी।
हाँ, वही। इस किताब में वो अपने आखिरी शब्द लिखते हैं। वो उस समय आखिरी जीवित नेफाइट थे जो सालों तक अकेले भटकते रहे।
अकेले?
हाँ, वो इस रिकॉर्ड में चर्च के रीति रिवाजों जैसे कि प्रार्थना और यूक्रेस्ट सैक्रमेंट के बारे में निर्देश देते हैं और आस्था, आशा और दान यानी मसीह का शुद्ध प्रेम चैरिटी पर बहुत सुंदर बातें लिखते हैं। और यहीं पर वो मशहूर मोरोनी का वादा भी है। इसमें पढ़ने वालों को न्योता दिया गया है कि वे प्रार्थना करके खुद ईश्वर से पूछें कि क्या ये किताब सच्ची है।
अच्छा, सीधा चैलेंज।
हाँ, और वादा किया गया है कि उन्हें पवित्र आत्मा के जरिए जवाब मिलेगा। ये सीधा निमंत्रण किताब के एक और लक्ष्य, व्यक्तिगत आस्था जगाना, को दिखाता है।
ठीक है, तो इन सारी कहानियों, युद्धों, उपदेशों, भविष्यवाणियों, इन सबसे मुख्य विषय या संदेश क्या निकलते हैं?
देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी है यीशु मसीह की केंद्रीयता। किताब का उपशीर्षक ही यही है, हर नबी उनकी गवाही देता है।
हाँ,
पूरी कहानी उनके आने का इंतजार करती है या उनके आने के बाद के असर को दिखाती है। उनके बलिदान मतलब अटोनमेंट को ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता बताया गया है।
दूसरा अहम विषय क्या है?
वो है वाचाएं और आज्ञाकारिता। अमेरिका को एक वादा किया गया देश कहा गया है, लेकिन ये वादा शर्तों के साथ आता है।
अच्छा।
जब लोग ईश्वर की आज्ञा मानते हैं और अपनी वाचाएं निभाते हैं तो वे समृद्ध और सुरक्षित रहते हैं। जब वे भटक जाते हैं तो उन्हें युद्ध, अकाल और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये सीधा कनेक्शन बार बार दिखाया गया है।
और तीसरा, वो जो बार बार आ रहा था, अभिमान या घमंड का विनाशकारी चक्र।
हाँ बिल्कुल, ये एक चेतावनी की तरह है। कहानी दिखाती है कि कैसे समृद्धि अक्सर लोगों में घमंड पैदा करती है।
सही।
घमंड से बुराई और समाज में बंटवारा आता है और फिर अंततः विनाश। इसके बाद लोग विनम्र होते हैं, पश्चाताप करते हैं और फिर से शांति और समृद्धि लौटती है, लेकिन अक्सर ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है।
ये तो आज भी रेलेवेंट लगता है।
बिल्कुल, दिलचस्प बात यह है कि ये चक्र सिर्फ एक धार्मिक चेतावनी नहीं लगता, बल्कि कई समाजों के उतार चढ़ाव का एक तरह का पैटर्न दिखाता है। स्रोत बताते हैं कि कैसे समृद्धि अक्सर आत्मसंतुष्टि और फिर नैतिक गिरावट की ओर ले जाती है।
चौथा बड़ा विचार है निरंतर रहस्योद्घाटन, यानी कंटिन्यूअस रेवलेशन का, है ना?
सही। ये किताब खुद ही इस बात का दावा है कि ईश्वर ने बोलना बंद नहीं किया है। ये कहती है कि ईश्वर आज भी जैसे पुराने जमाने में करते थे, नबियों के जरिए बात करते हैं, और नबियों की बातों को अनसुना करना ही लोगों के पतन का मुख्य कारण बनता है। ये खुले कैनन का सिद्धांत है जो इसे कई दूसरे ईसाई संप्रदायों से अलग करता है।
पांचवा, गुप्त संयोजनों या साजिशों के खतरे। आपने गैडियंटन लुटेरों का जिक्र किया था।
हाँ, किताब बार बार ऐसे गुप्त गिरोहों के खिलाफ चेतावनी देती है जो सत्ता और फायदे के लिए हत्या, धोखा और कानून तोड़ने का काम करते हैं। इन्हें नेफाइट और जेरेडाइट दोनों सभ्यताओं के पतन का एक बड़ा कारण बताया गया है। ये आज के संदर्भ में भी सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे छिपे हुए एजेंडे समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
और छठा है व्यक्तिगत इच्छा स्वातंत्र्य, यानी एजेंसी और जवाबदेही।
बिल्कुल, ये सिद्धांत कि हर इंसान को सही और गलत के बीच चुनने की आज़ादी है बहुत अहम है। किताब के पात्र किस्मत के मारे नहीं हैं, उनके चुनाव ही उनके भविष्य और आध्यात्मिक स्थिति को तय करते हैं। किताब जोर देती है कि लोगों को सक्रिय रूप से आस्था, पश्चाताप और बप्तिस्मा के रास्ते पर चलकर मसीह के पास आना चाहिए।
और एक और विषय था शायद, इसराइल का एकत्रीकरण।
हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। किताब खुद को अंतिम दिनों में ईश्वर द्वारा इसराइल के बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करने के काम में एक जरूरी औजार मानती है।
अच्छा।
इसका मकसद बाइबल के साथ मिलकर लोगों को उनकी वाचाओं और विरासत की याद दिलाना है और उन्हें यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पहचानने में मदद करना है। ये फिर से किताब के घोषित लक्ष्य को दिखाता है।
इस किताब में कई ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो इसके मानने वालों के लिए बहुत अहमियत रखते होंगे। कुछ प्रमुख कोट्स या विचारों पर नजर डालें।
जरूर। पहला है 2 नेफी 25:26 से, जिसका सार है, हम मसीह के बारे में बात करते हैं, हम मसीह में खुशी मनाते हैं, हम मसीह का प्रचार करते हैं ताकि हमारे बच्चे जान सके कि उन्हें अपने पापों की माफी के लिए कहां देखना है।
ये तो बिल्कुल सीधा है। ये किताब के मसीह केंद्रित होने का निचोड़ है। सब कुछ यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है।
एकदम, ये साफ कहता है कि वही मुक्ति का स्रोत है। ये किताब के मुख्य लक्ष्य का सीधा ऐलान है।
दूसरा, मुसाया 3:19-1 विशार, क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर का शत्रु है और हमेशा रहेगा जब तक कि वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा को ना माने और स्वाभाविक मनुष्य को उतार फेंके और प्रभु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा एक संत ना बन जाए।
ये इंसान के स्वभाव के बारे में एक बुनियादी सिद्धांत बताता है कि इंसान अपने नेचुरल स्टेट में ईश्वर से दूर है, लेकिन ये स्थिति बदली जा सकती है।
कैसे?
रास्ता है ईश्वर की प्रेरणा को मानना, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना और मसीह के बलिदान की शक्ति से बदलना। ये एक आध्यात्मिक बदलाव की प्रक्रिया है।
तीसरा, अल्मा 32:21 से आस्था के बारे में। आस्था उन चीजों का पक्का ज्ञान होना नहीं है, इसलिए यदि तुम में आस्था है तो तुम उन चीजों की आशा करते हो जो दिखाई नहीं देती पर सच्ची हैं।
ये आस्था की एक बहुत ही कह सकते हैं व्यावहारिक परिभाषा है। आस्था का मतलब आंखों देखी चीजों का ज्ञान नहीं, बल्कि अनदेखी सच्चाइयों पर भरोसा और उम्मीद रखना है।
मतलब ज्ञान से ज्यादा उम्मीद और भरोसा।
हाँ बिल्कुल।
चौथा, ईथर 12.27 से कमजोरी के बारे में एक अनोखा नजरिया, और यदि मनुष्य मेरे पास आए तो मैं उन्हें उनकी कमजोरी दिखाऊंगा। मैं मनुष्यों को कमजोरी देता हूं ताकि वे विनम्र हो सकें। यदि वे मेरे सामने खुद को विनम्र करते हैं और मुझ पर विश्वास रखते हैं तो मैं उनके लिए कमजोर चीजों को ताकतवर बना दूंगा।
ये मानवीय कमियों को देखने का एक अलग तरीका है। ये कहता है कि कमजोरी सिर्फ एक कमी नहीं बल्कि विनम्रता सीखने का एक जरिया हो सकती है।
अच्छा।
और अगर इंसान विनम्र होकर ईश्वर पर भरोसा करे तो वही कमजोरियां ताकत में बदल सकती हैं।
और पांचवा, वो मशहूर वादा मोरोनी 10.4 से, और जब तुम इन बातों को पाओ तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम मसीह के नाम पर अनंत परमेश्वर पिता से पूछो कि क्या ये बातें सच्ची हैं। और यदि तुम सच्चे हृदय से, सच्ची नीयत से मसीह में विश्वास रखते हुए पूछोगे तो वह पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा तुम्हें इसकी सच्चाई प्रकट करेगा।
इसे मोरोनी का वादा कहते हैं। ये किताब की सच्चाई को परखने का तरीका बताया गया है। ये पढ़ने वाले के लिए एक सीधी चुनौती और न्योता है।
मतलब सबूत नहीं बल्कि व्यक्तिगत अनुभव।
हाँ, किताब का अंतिम दावा किसी ऐतिहासिक सबूत पर नहीं बल्कि प्रार्थना के जरिए मिलने वाली व्यक्तिगत आध्यात्मिक पुष्टि पर टिका है। ये दिखाता है कि किताब का एक बड़ा लक्ष्य पाठक को व्यक्तिगत अनुभव के लिए प्रेरित करना है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है? क्या कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं?
जरूर, व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो ये निर्णय लेने का एक तरीका सुझाती है।
वो मोरोनी वाला वादा।
हाँ, पहले पढ़ो, समझो, फिर चुनाव करो और पुष्टि के लिए प्रार्थना करो। और वो कमजोरी को ताकत में बदलने का विचार, वो हमें अपनी कमियों को देखने का नया नजरिया दे सकता है, उनसे सीखने और आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। और परिवार और समाज के स्तर पर किताब पीढ़ी दर पीढ़ी मूल्यों को सिखाने पर जोर देती है।
हाँ,
सामाजिक तौर पर वो जो चेतावनियां हैं, घमंड, साजिशें, समाज में बंटवारा, वो आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं।
बिल्कुल।
कैप्टन मोरोनी जैसे किरदार स्वतंत्रता और न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। और चार नेफी में जो एकता और शांति का दौर दिखाया गया है, वो एक आदर्श समाज की तस्वीर पेश करता है, भले ही वो थोड़े समय के लिए रहा हो।
मुश्किल हालात से गुजरने वालों के लिए भी इसमें कुछ हो सकता है।
हाँ बिल्कुल, नेफी या अल्मा जैसे किरदारों की कहानियां, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों के बावजूद अपनी आस्था नहीं छोड़ी, वो हिम्मत बंधा सकती हैं। ये सिखाती हैं कि चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है और जीवन का एक बड़ा उद्देश्य हो सकता है।
तो कुल मिलाके फाइनल टेक अवे क्या हैं इस किताब से?
देखिए, सबसे अहम बात तो यीशु मसीह की केंद्रीयता है, जैसा कि ये किताब प्रस्तुत करती है।
हाँ।
दूसरी, व्यक्तिगत आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी का गहरा रिश्ता। सच्ची आस्था सिर्फ निजी नहीं होती, वो दूसरों की सेवा और न्याय के कामों में भी दिखनी चाहिए। और तीसरा, ईश्वर के निरंतर संवाद करने का दावा, जो धर्म और आध्यात्मिकता को एक कह सकते हैं एक जारी प्रक्रिया के रूप में देखता है। तो किताब का मुख्य लक्ष्य मसीह में विश्वास जगाना और ईश्वर के साथ किए गए वादों यानी कोविनेंस के ज्ञान को वापस लाना है।
ये निश्चित रूप से एक खास किताब है। ये खुद को एक प्राचीन इतिहास बताती है जिसे आधुनिक दुनिया के लिए फिर से लाया गया है।
हाँ,
ये एक विश्वव्यापी धर्म की नींव है। इसकी कहानी कहने का तरीका, इसके दावे और इसका इतिहास, ये सब इसे दुनिया के धार्मिक साहित्य में एक अलग जगह देते हैं। इसकी भूमिका सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि एक पूरे आंदोलन को प्रेरित करना रही है।
बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
हाँ जरूर।
मॉर्मन की किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ईश्वरीय अनुभव या प्रेरणा अलग अलग संस्कृतियों और समयों में कैसे प्रकट हो सकती है। आज की इस जटिल और जानकारी से भरी दुनिया में रहस्योद्घाटन या दिव्य मार्गदर्शन का क्या अर्थ हो सकता है? क्या ये सिर्फ प्राचीन कहानियों तक सीमित है या आज भी इसके मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।
बहुत अच्छा पॉइंट।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।